मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं लिथियम के बारे में आप सबसे कुछ बातें करूंगा, लेकिन इससे पहले एक सूचना और एक खबर भी। सूचना यह है कि YouTube पर अभी हम लोगों ने एक लेक्चर डाला हुआ है, ऑडियो ही है वो, वीडियो के फॉर्म में उसको प्रेजेंट किया गया YouTube पर। एकला चलो रे, एकला चलो रे, अकेले चलो। कहां अकेले चलो, जिंदगी भर अकेले चलने की बात नहीं कही गई है वहां। आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, अपने अपने घरों को छोड़कर के पता नहीं कहां कहां जाकर के आप तैयारी कर रहे हैं। हालांकि वहां आपके कमरे में आपके साथ कोई रह रहा है, आप क्लास में जब जाते हैं तो वहां लोग आपके साथ हैं। अपने गांव से अगर गए हैं तो शहर में पहुंचे हैं और वहां की आबादी ज्यादा है, सुनसान नहीं है, लोग आपके साथ हैं, आप लोगों के बीच में हैं। पता नहीं क्यों इसके बावजूद आपको अकेलापन सा लगता होगा, मन कमजोर पड़ता होगा, घर की याद आती होगी, लगता होगा कि छोड़ छाड़ कर चले जाएं, किस अभिशप्त क्षणों में यहां आने का फैसला कर लिया था, इस तरह के विचार आपके दिमाग में आते होंगे, सबके दिमाग में आते हैं। केवल इसी समस्या को लेकर के यह लेक्चर मैंने तैयार किया है और मुझे इस बात की खुशी है कि इसको दिए हुए अभी एक डेढ़ एक दिन हुए हैं मेरी समस्या यूट्यूब पर डाले हुए, और मुझे बहुत ही संवेदनशील किस्म के मैसेज पढ़ने को मिल रहे हैं, बड़े संवेदनशील किस्म के, कि सर ऐसा लगता है जैसे कि आप तो हमारे अंदर उतर कर बातें कर रहे हैं। सर आपको ऐसा कैसे पता लगा कि हम लोग ऐसा ही सोचते हैं या मैं ऐसा सोच रहा हूं? इस तरह की सूचनाएं, खबरें, प्रतिक्रियाएं मुझे मिल रही हैं। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप सब इसे सुने, चूंकि आप मेरे डेली ऑडियो लेक्चर को सुनते हैं इसे भी सुने। ज्यादा समय का नहीं है, मुश्किल से मुझे लगता है कि 15-1 मिनट का होगा, इतना समय तो आप निकाल ही सकते हैं। प्लीज इसे जरूर सुने। और मेरी एक रिक्वेस्ट, और वो ये कि यदि आपको अच्छा लगे तो इसे आप शेयर भी करें, दूसरों तक पहुंचाएं, मेरा इतना काम कर दें। और ये सच पूछे तो आपका भी काम है, दूसरों के लिए भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो कर ही लेना चाहिए, तो ऐसा आप करें प्लीज। अब जो एक खबर है वो ये है फ्रेंड्स कि रेडियो न्यूज में कल आपने सुना होगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती की जो 200वीं जयंती जो मनाई जाएगी उसके समारोह का शुभारंभ हो गया है, और इस समारोह का शुभारंभ किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने। मैं आपको बता चुका हूं कि जब प्रधानमंत्री जी किसी इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो डेफिनेटली उसका महत्व बढ़ जाता है, और वैसे भी स्वामी दयानंद सरस्वती कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, यानी भारतीय पुनर्जागरण काल का बहुत बड़ा नाम है। विवेकानंद तो इनके बाद के हैं। राजा राम मोहन राय को एक तरीके से अग्रदूत कहा जाता है, हमारे यहां के रिनेसा पीरियड का पुनर्जागरण काल का अग्रदूत राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज उन्होंने बढ़ाया। इसके बाद फिर आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, बहुत जबरदस्त रूप से इम्पैक्ट भी रहा है आर्य समाज का, और इसके बाद फिर स्वामी विवेकानंद आते हैं। ये तीन यूं कह लीजिए कि मुझे तारे दिखाई देते हैं, स्टार्स दिखाई देते हैं हमारे रिनेसा पीरियड के। क्योंकि अब 200वीं जयंती मनाई जा रही है तो डेफिनेटली हमारे लिए दयानंद सरस्वती, हमारे लिए मतलब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि आपको दयानंद सरस्वती जी के जीवन के बारे में बहुत ही थोड़ा सा, बहुत सिंपल थोड़ा सा प्रोफाइल देख लेना चाहिए, और इसके बाद इनकी जो फिलॉसफी रही है और खासकर आर्य समाज का जो योगदान रहा है भारतीय समाज में, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, क्या सच में स्वतंत्रता आंदोलन में भी योगदान रहा है? आपको छांटना पड़ेगा, इस पर विचार करना पड़ेगा, तो इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए, अपेक्षाकृत अच्छे से कर लेनी चाहिए, प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी। हालांकि आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं नहीं भी बताता तो भी आप तैयारी करते, लेकिन देखिए फर्क क्या है, फर्क केवल यह है कि अगर मैं दयानंद सरस्वती पर तैयारी करने पर जोर दे रहा हूं, इसका मतलब है कि सिलेबस के हिसाब से तो आप तैयारी करते, लेकिन मैं इसके माध्यम से कहना यह चाह रहा हूं कि इस साल की परीक्षा की दृष्टि से आप तैयारी कीजिए। इन दोनों तैयारियों में थोड़ा सा फर्क होता है, सिलेबस तो आपको तैयार करना ही करना है, लेकिन जब परीक्षा की दृष्टि से हम तैयारी करते हैं तो हमारी फोकस्ड प्रिपरेशन होती है, और मुझे लगता है कि इस रणनीति का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं सीधे सीधे अपने मुख्य विषय पर, और वह है लिथियम को लेकर। लिथियम के बारे में इस बीच में अखबारों में जो छपा है वो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, उस पर मैं ज्यादा जाना नहीं चाहूंगा। लिथियम एक कह लीजिए कि बहुत ही बेशकीमती धातु है आज के समय में, और सबसे खुशी की बात यह है कि हमारा जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने कश्मीर में लिथियम का पता लगा लिया है, कश्मीर में। लेकिन प्री एग्जामिनेशन इसी तरह से क्वेश्चंस नहीं पूछता है, कश्मीर में लगाया ठीक है, मैंने कहा कि आपको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लगाया है यह भी मालूम होना चाहिए। 59 लाख टन लगभग अनुमानित भंडार है, 59 लाख टन, इसे भी बात नहीं बनेगी। जम्मू कश्मीर में तो लगाया है पता इसका, लेकिन जम्मू कश्मीर में कहां लगाया है, वो कौन सी जगह है, कोई है जगह, वो नाम क्या है उसका, वो कौन सा इलाका है, कौन सा क्षेत्र है, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है वो यहां तक थोड़ा सा पहुंच जाता है, कुछ स्पेशल टेस्ट करना चाहता है, कॉमन चीजें टेस्ट नहीं करना चाहता। हालांकि सब्जेक्ट का नाम है जनरल स्टडीज, उसका हिंदी में अनुवाद हम सामान्य ही करते हैं, जनरल के सेंस में करते हैं, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा तो विशेष तक वो चला जाता है। तो विशेष क्या है, वो जो क्षेत्र है उसका नाम है रियासी, रियासी, ये आप दिमाग में रखें, रियासी, ठीक है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई है, अब आपको लिथियम के बारे में थोड़ा सा और आगे जानना चाहिए, क्योंकि आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, सामान्य तैयारी नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि इसके उपयोग कहां कहां है, वो आपके साइंस का हिस्सा हो जाएगा, ये ज्योग्राफी का हिस्सा हो सकता है, रिसोर्सेज का हिस्सा हो सकता है, लेकिन एक साइंस का भी हिस्सा है। इसका कहां कहां उपयोग होता है, पदार्थ की जो विशेषताएं होती हैं मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। देखिए जो इलेक्ट्रिक डिवाइस हो रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, अभी देखिए कितनी तेजी के साथ इजाद हो रही है, फैला हो रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों या इलेक्ट्रिक जो डिवाइस होते हैं आपके मोबाइल फोन में भी होते हैं, तो इलेक्ट्रिक डिवाइस और इलेक्ट्रिक वाहन में इसका बहुत ही जबरदस्त रूप से इस्तेमाल होता है, क्योंकि इससे जो बैटरी रिचार्ज होने वाली जो बैटरी है वो तैयार की जाती है। और हमारे यहां जो सिरेमिक और ग्लास जो बनाया जाता है उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है, मतलब इसको आप यूं कह लीजिए कि भविष्य का जबरदस्त ईंधन कहा जा रहा है, और खासकर भारत जैसे देश के लिए जहां इतनी आबादी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सोचिए कितने बनेंगे, कितने मोबाइल फोन तैयार हो रहे हैं, कितने यूज में आ रहे हैं, और फिर हमने जो बकायदे रिन्यूअल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में जो कमिटमेंट किया हुआ है उसको पूरा करने की दृष्टि से लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट धातु हो गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ। तो हम अभी तक क्या कर रहे थे, हमारी जो रिक्वायरमेंट है खासकर बैटरी को लेकर के, उसका लगभग 70% हम चीन और हांगकांग से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। बाकी चलिए हम दूसरी जगह से इंपोर्ट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत आ जाता है। अब आप देखें कि जब ये लिथियम हमारे यहां मिल गया, मेंस की दृष्टि से मैं आ रहा हूं, तो इससे हमें क्या क्या फायदा होगा, हम क्यों इसको लेकर के इतने ज्यादा उत्साही हैं, इसमें अब आप अपना दिमाग लगाइए, अब आप इकोनॉमिक्स पर आ जाइए। देखिए कैसे कैसे एक ही टॉपिक है लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट के आधार पर इसे देख रहे हैं। अब आप इकोनॉमिक्स की दृष्टि से सोचिए, सीधी सी बात है कि अगर हम 70-75% लिथियम आयन इंपोर्ट कर रहे हैं तो विदेशी मुद्रा देनी पड़ती होगी ना, तो हम विदेशी मुद्रा की बचत करेंगे, और ये कम बड़ी बात नहीं है अगर लाखों डॉलर हमारी विदेशी मुद्रा की बचत हो रही है तो। और फिर अगर हमारे यहां भंडार मिल गया है तो आपको नहीं लगता कि हम खुद ही बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करने लगेंगे, और जब बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करने लगेंगे तो क्या उससे हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। और फिर हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चूंकि भंडार हमारे यहां ही मिल रहा है, हमारे यहां ही वह बनेगा, हम इस मायने में आत्मनिर्भर हो जाएंगे, तो हो सकता है कि इसकी कीमतें भी कम हो, तो जो हमारा आम उपभोक्ता वर्ग है उसे कम कीमत पर हम इससे बनी हुई वस्तुएं उपलब्ध करा सकेंगे। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने इसे तैयार कर लिया। ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक तथ्य और इसमें एड ऑन कर सकते हैं कि अभी दुनिया में सबसे ज्यादा जो लिथियम का उत्पादन करने वाला जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पर है चिली, और तीसरे स्थान पर है चीन। दोस्तों अभी मैंने कहा कि हम 70-75% जो लिथियम आयन है कहां से मंगाते हैं, चीन और हांगकांग से, यही मैंने कहा। हमारे यहां लिथियम का भंडार मिल गया है, हम कहां से आयात कम करेंगे, चीन से हम अपना आयात कम करेंगे, तो क्या इसका इंटरनेशनल रिलेशन से कोई संबंध है? है ना, चीन के साथ हमारे संबंध तनावपूर्ण किस तरीके के हैं आप देख रहे हैं। तो अगर चीन पर से हमारी निर्भरता कम होगी तो यह क्या कम बड़ी बात होगी? और आप देखिए कि भारत कैसे धीरे धीरे चीन पर अपनी निर्भरता कम करता जा रहा है, और बल्कि पूरी दुनिया इसी कोशिश में है कि चीन पर से निर्भरता कम की जाए। कोविड के बाद से यह स्थिति बन गई है। तो अब आप देखिए कि एक ही टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन जब आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिहाज से इस पर तैयारी करेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से इसे देखना होगा। और दोस्तों, केवल इसे ही नहीं बल्कि जो दूसरे टॉपिक्स हैं उनके साथ भी आपको कुछ इसी तरह का व्यवहार करना चाहिए, भले उसमें इतने एंगल न निकल पाए, लेकिन किसी भी एक टॉपिक को आप एकदम से एक ही एंगल तक सीमित न रखें। लेकिन इसका एक और भी बहुत ही जबरदस्त एंगल है, और दोस्तों मैं उसकी चर्चा आज यहां करने नहीं जा रहा हूं क्योंकि वक्त नहीं है। उस एंगल की जानकारी मैं यहां आपको इकोनॉमिक टाइम्स में छपे हुए एडिटोरियल कमेंट्स के माध्यम से दे रहा हूं। ये प्रेस क्लिपिंग्स में आपको प्रोवाइड मैं आज कर रहा हूं, इसे आप लोग अपने ढंग से पढ़ने और समझने की कोशिश कीजिए। यदि संभव हुआ तो मैं इस टॉपिक पर कल आप सबसे बातें करूंगा। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ नाम हैं, सोनम साहू पत्थलगांव छत्तीसगढ़ से, किशन जाखड़ राजस्थान से, मामराज दानोदिया सीकर राजस्थान से, विजय श्री विश्नोई बीकानेर राजस्थान से, दीप्ति मई परमाणिक झारसुगुड़ा उड़ीसा से, मंजुला तिवारी और सुमन मौर्य, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।